उसे ऐसा करता हुआ देख अरुणिमा अपने मन में सोचती है कि अगर आस्तिक पहले वाला आस्तिक ही होता तो ऐसा कभी नहीं करता। वो कभी भी अरुणिमा की और बच्चों की ना तो केयर करता और ना ही उनके काम में मदद करता। अरुणिमा ये सब सोच ही रही थी कि तभी एक नौकरानी खाने की ट्रॉली कमरे के अंदर लेकर आती है। अरुणिमा ये देखकर हैरान हो जाती है। वो कैसे भूल गई कि अपने दो छोटे छोटे बच्चों को खाना खिलाने के बाद उसे अपने एक बड़े बच्चों को भी खाना खिलाना है। डॉक्टर ने बताया था कि आस्तिक सामान्य इंसानों की तरह खाना नहीं खाता है, बल्कि जब भी वो खाना खाता है तो अपना पूरा चेहरा और कपड़े सभी गंदा कर लेता है। यहाँ तक कि वो चावल को हवा में उछाल उछाल कर खाता है, जिसकी वजह से चावल कई बार उसके बालों में और उसके चेहरे पर भी लग जाते थे। वो अपने आप को बहुत गंदा कर लेता था खाना खाते वक्त, इसी वजह से हॉस्पिटल स्टाफ को उसे खाना खिलाना पड़ता था। वो हॉस्पिटल स्टाफ के हाथों से खाना नहीं खाता था, जिस वजह से हॉस्पिटल स्टाफ को उसके हाथ को ज़बरदस्ती पकड़कर उसके मुंह में खाना ठूसना पड़ता था। अरुणिमा आस्तिक को देखती है और उसे सोफे पर बैठने का इशारा करती है। आस्तिक बच्चों की तरह कूदते हुए जाता है और सोफे पर पालती मारकर बैठ जाता है। अरुणिमा प्लेट में खाना निकालती है और उसके सामने लेकर बैठ जाती है। आस्तिक पालती मार के बिल्कुल किसी अच्छे बच्चे की तरह बैठा हुआ था और अरुणिमा ने जब तक उसे पूरा खाना खिलाया तब तक वो अरुणिमा को परेशान करता ही रहा। वो कभी अरुणिमा की साड़ी के आंचल से खेलता तो कभी उसके बालों से, वो कभी अरुणिमा की चोटी को घुमाता तो कभी उसके बालों से निकल रही लट को उसके नाक के नीचे लगाकर मूंछ बनाता। वो अरुणिमा के बालों की एक एक लट को छूते हुए उसके कान के पीछे करता है और बच्चों की तरह अपने मुंह में खाना चबाते हुए कहता है, तुम्हारे बाल बहुत अच्छे हैं अरुणिमा। अरुणिमा ने उसे कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि वो उसके स्पर्श को महसूस कर रही थी और जैसे जैसे आस्तिक अरुणिमा को छू रहा था उसे ऐसा लग रहा था कि वो दर्द उसके सामने फिर से उभर कर आ गया है। अरुणिमा आस्तिक को खाना खिलाते हुए कहती है, आस्तिक मैं तुमसे कुछ पूछूं? आस्तिक अच्छे बच्चे की तरह हाँ में सर हिलाते हुए कहता है, हाँ अरुणिमा पूछो ना। अरुणिमा रोटी को सब्जी में लगाते हुए आस्तिक की तरह बढ़ाती है और कहती है, आस्तिक क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं है अपने परिवार के बारे में, मेरे परिवार के बारे में, मेरी माँ के बारे में? आस्तिक अपना मुंह खोलकर अरुणिमा के हाथ से खाना खा लेता है और फिर उसे चबाते हुए अपने एक हाथ से अपने सर को खुजाते हुए कुछ याद करने की कोशिश करता है, लेकिन जब उसे कुछ याद नहीं आता तो वो ना में सर हिलाता है। अरुणिमा देख पा रही थी कि आस्तिक ने याद करने की कोशिश तो की है लेकिन उसे सच में कुछ याद नहीं आ रहा है। निराशा के साथ अरुणिमा ने एक गहरी सांस छोड़ी। न जाने कैसे वो आस्तिक को ठीक करेगी। खाना खिलाने के बाद अरुणिमा आस्तिक का मुंह पोंछती है और उसके हाथों को साफ करती है। वो उसे उसकी दवाई देती है। आस्तिक दवाई खाने में बहुत नखरे दिखा रहा था लेकिन फिर भी अरुणिमा ने जिद करके और गुस्सा करके उसे दवाई खिला ही दी थी। अरुणिमा के गुस्से के आगे आस्तिक बिल्कुल भीगी बिल्ली बन गया था और उसने चुपचाप दवाई को खा लिया था। दवाई खाने के बाद अरुणिमा ने आस्तिक को बेड पर लिटा दिया और उसके सर को थपकी देकर सुलाने लगी। अरुणिमा की मजबूरी थी कि उसे भी आस्तिक के साथ ही बेड पर सोना पड़ा था क्योंकि आस्तिक ने उसकी साड़ी के आंचल को अपने कंधे के नीचे दबा लिया था और वो उसे छोड़ ही नहीं रहा था। उसे डर था कि अगर वो सो जाएगा तो अरुणिमा उसे छोड़कर भाग जाएगी। डॉक्टर ने बताया था कि आस्तिक रात में अक्सर उठकर चिल्लाने लगता है और किसी गंदे आदमी के बारे में बात करता है। कोई चुड़ैल उसके सपने में आती है जो अरुणिमा और उसके बच्चों को नुकसान पहुंचाना चाहती है। अरुणिमा ने इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया था। उसे लगा ये बातें सिर्फ आस्तिक की कल्पनाएं हैं, इन बातों में कोई सच्चाई नहीं है। एक बार जब आस्तिक पूरी तरह से नींद में सो जाता है तो अरुणिमा उसके कंधे के नीचे से अपनी साड़ी का आंचल खींच लेती है। वो बहुत मुश्किल से आस्तिक की मुट्ठियों से अपनी साड़ी को अलग करती है और उठकर सोफे पर चली जाती है क्योंकि वो आस्तिक के साथ एक बेड पर कंफर्टेबल नहीं हो पा रही थी और उसे नींद भी नहीं आ रही थी। लेकिन सोफे पर लेटने के साथ ही उसे नींद आ गई। अभी अभी अरुणिमा की नींद लगी ही थी कि तभी उसके कानों में आस्तिक के चिल्लाने की आवाज़ आती है। वो चौंक कर बैठ जाती है और देखती है कि आस्तिक का पूरा चेहरा पसीने से भरा हुआ था और वो आंखें बंद किए हुए ही अपने हाथ पैरों को पटक रहा था। मत मारो, मत मारो, तुम गंदे आदमी, मैं कह रहा हूँ ना, मत मारो मेरी अरुणिमा को, मत मारो मेरे बच्चों को, मत मारो, मैं बता रहा हूँ मैं तुम्हें मार दूंगा। मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, उन्हें चोट मत पहुँचाओ, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा गंदे आदमी, भाग जाओ यहाँ से। आलतू जलालतू, आई बला को टालतू, गंदे आदमी भाग जा। अरुणिमा को यकीन हो गया था कि आस्तिक कोई बुरा सपना देख रहा है। अरुणिमा जल्दी से आस्तिक के पास जाती है और उसके पास बैठ जाती है। वो उसका हाथ पकड़ती है और धीरे से उसके कान में कहती है, तुम ठीक हो, कोई चुड़ैल नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैं यहाँ पर हूँ, यहाँ पर कोई आदमी नहीं है, बस मैं हूँ तुम्हारे पास और बच्चे यहीं पर हैं, उन्हें कोई नहीं मार रहा है। आस्तिक का पूरा चेहरा आंसुओं से भर जाता है। वो जब अपनी आंखें खोलता है तो अपने सामने अरुणिमा को देखकर वो रोने लगता है। वो जल्दी से रोते हुए अरुणिमा को गले लगा लेता है। आस्तिक रोते हुए कहता है, अरुणिमा तुम ठीक हो ना, वो चुड़ैल तुम्हें मार रही थी, वो आदमी बहुत बुरा है। अरुणिमा हैरान हो जाती है आस्तिक की बात सुनकर। वो आस्तिक के आंसुओं को अपने आंचल से साफ करते हुए कहती है, कौन गंदा आदमी, आप किसकी बात कर रहे हैं? किसे देखा है आपने? कौन मार रहा था मुझे और हमारे बच्चों को? आस्तिक रोते हुए कहता है, वो आदमी, वो बहुत गंदा है, वो बहुत बड़ा है और बहुत डरावना भी है। वो काले काले कपड़ों में आता है और तुम्हें मारता है, बच्चों को भी मारता है। अरुणिमा ने ना में सर हिलाया और कहा, नहीं आस्तिक, कोई मुझे नहीं मार रहा है और ना ही कोई बच्चों को मार रहा है। देखिए, हम यहीं पर हैं। तुमने किसे देखा है सपने में? अरुणिमा, मैंने उसे सपने में देखा है। वो तुम्हें मारता है, वो आदमी, वो गंदा आदमी, वो दिखने में मेरे जैसा है और वो तुम्हें कठपुतली कहकर बुलाता है।